ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि 228 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। झारखंड में पहले चरण की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। 25 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए सुरक्षा, सम्मान और समानता को प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घोषित किए गए 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र तकनीक, नवाचार और एआई में अग्रणी बनने के भारत के प्रयास में महत्वपूर्ण कदम हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये उत्कृष्टता केंद्र देश की युवा शक्ति को लाभान्वित करेंगे और भारत को भविष्य के विकास का केंद्र बनाने में योगदान देंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों का अनावरण किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री अब्दुल्ला को सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया था। जम्मू कश्मीर में इससे पहले विधानसभा के लिए वर्ष 2014 में चुनाव हुआ था। अब 10 वर्ष बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। हरियाणा में आज आयोजित होने वाली एक बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बीच बृहस्पतिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए चंडीगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई। संयुक्त संसदीय समिति ने कल नई दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने की। समिति ने विधेयक के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की कमियों को दूर करना और उनकी दक्षता बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति के पास वक्फ विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए भेजा गया है। समिति इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के हिंसाग्रस्त महासी क्षेत्र में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हत्या में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर कल पाकिस्तान पहुंचे। वे आज इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद CHG की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। SCO की बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में हो रही है। SCO CHG की इस वार्षिक बैठक में व्यापार और आर्थिक मुद्दे मुख्य एजेंडे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनकी ये पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है। उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की संभावना को खारिज कर दिया। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन आज से मैक्सिको और अमेरिका की यात्रा पर रहेंगी। इस महीने की 17 से 20 तारीख तक मैक्सिको की अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान वे टेक लीडर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें ग्वाडलाजारा में मौजूद प्रमुख भारतीय IT दिग्गजों सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी के नेता मौजूद रहेंगे। श्रीमती सीतारामन मैक्सिको के वित्त एवं सार्वजनिक ऋण मंत्री रोजेलियो रामिरेज डे ला ओवा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। इसके अलावा वे संसदीय सहयोग को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मैक्सिकन संसद के कई सदस्यों के साथ चर्चा भी करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।